नमस्कार भारत, तारीख 18 अक्टूबर, दिन गुरुवार। मैं हूं मानसी दास। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सबरीमला मंदिर में महिलाओं को नहीं मिल पा रहा प्रवेश, कई इलाकों में धारा 144 लागू। भाजपा के कार्यकाल में पहली बार एक मंत्री ने दिया इस्तीफा, क्या पार्टी पर पड़ेगा असर?
सरकार का मौन रहना और कहना हम तो एक डिस्टेंस रखेंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं था। और ये सरकार को मेरे ख्याल समझ में आ गया कि एनजे अकबर का भार हम क्यों ढोए।
और सुनाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान।
और अमेरिका ने पूरी तरह से इसराइल का साथ दिया, सऊदी अरब के जो उस वक्त के बादशाह थे किंग फैसल, उन्होंने जिन्होंने भी इसराइल का साथ दिया था उनके खिलाफ एक तेल की पाबंदी लगाने का एक ऐलान।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार सबरीमला के कपाट बुधवार को खोले गए, लेकिन महिलाओं के प्रवेश को लेकर विरोध अब भी बना हुआ है। मंदिर की तरफ जाने वाले रास्तों को प्रदर्शनकारियों ने रोक रखा है। मीटू अभियान के तहत यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अकबर का इस्तीफा आने के बाद उन पर सबसे पहले आरोप लगाने वाली वरिष्ठ पत्रकार प्रिया रमानी ने ट्वीट किया कि अकबर के इस्तीफे से हमारे आरोप सही साबित हुए हैं, हमें अब उस दिन का इंतज़ार है जब हमें कोर्ट में न्याय मिलेगा। वहीं अकबर का कहना है कि क्योंकि ये उनकी निजी लड़ाई है इसलिए वह मंत्री पद पर रहते हुए इसे नहीं लड़ना चाहते थे। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के एक टेक्निकल कॉलेज में हुई गोलीबारी में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। रूसी जांचकर्ताओं ने बताया कि हमलावर ने दूसरे छात्रों पर गोलियां बरसाई और अंत में खुद को भी गोली मार ली। रूस के सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों से हवाले से स्थानीय मीडिया ने कहा है कि हमलावर ने गोलीबारी शुरू करने से पहले कैंटीन में एक बम विस्फोट भी किया था। पहले रूसी जांचकर्ताओं ने इसे एक आतंकवादी हमला कहा था, लेकिन समिति अब इसे सामूहिक हत्या मानकर इसकी जाँच कर रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है और मारे जाने वालों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। जांच समिति की सदस्य स्वेटलाना पेंट्रको ने हमलावर की पहचान 18 वर्षीय छात्र के तौर पर की है। स्वेटलाना का कहना है, शुरुआती जांच के आधार पर हम कह सकते हैं कि गोली लगने की वजह से ही मौतें हुई हैं। हमलावर की पहचान हो गई है जो हमला करने से ठीक पहले ही कॉलेज में दाखिल हुआ था। फुटेज में वो बंदूक लिए हुए नजर भी आ रहा है। वो चौथे साल का छात्र था। अभी तक की जांच के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि उसने पहले दूसरों पर गोलियां बरसाई और बाद में खुद को मार लिया। ये थे जांच समिति की सदस्य स्वेटलाना के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वो चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कांगो गणराज्य में अतिरिक्त संसाधनों को मंजूरी दे, जहां स्वास्थ्य कर्मचारी इबोला वायरस के प्रकोप से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। अगस्त से लेकर अभी तक इबोला के प्रकोप की वजह से 139 लोगों की मौत हो चुकी है। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियोसोस ने कहा,
द कमिटी रिकमेंडेड दैट द करंट इबोला आउटब्रेक इन डीआरसी,
कांगो गणराज्य में 250 लोग इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि इसके दुनिया भर में फैलने की आशंका अभी उतनी नहीं, लेकिन पड़ोसी देशों में इसके फैलने का संकट बना हुआ है। हम इससे निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इसे पूरी तरह खत्म न कर दें। ये थे विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियेसोस के शब्द। ट्विटर ने रूस और ईरान से जुड़े करीब 1 करोड़ ऐसे ट्वीट सार्वजनिक किए हैं जो विदेशों में राजनीतिक रुझानों को प्रभावित करने की कोशिश से संबंधित हैं। इनमें से कुछ ट्वीट साल 2009 के भी हैं। कनाडा में गांजे का इस्तेमाल अब गैर कानूनी नहीं होगा। अब इसके इस्तेमाल को वैध करार दे दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोगों ने इसे लेकर चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि ऐसा हो जाने से युवाओं में इसके सेवन बढ़ेगा और सुरक्षा को लेकर भी समस्याएं पैदा होंगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन की, यानी केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की। कोर्ट के आदेश के बाद सबरीमला मंदिर के कपाट कल हर उम्र की महिलाओं के लिए खोले गए, लेकिन आदेश के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी रहा। जब कुछ महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की तो उनके साथ हिंसा होने की खबरें भी आई। कई महिला पत्रकारों के साथ भी मारपीट की खबरें आई हैं। इसी तनाव की स्थिति के बीच मंदिर में आज तड़के पूजा हुई। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी के पास, जो इस वक्त सबरीमला मंदिर में मौजूद हैं। इमरान जी, क्या आपको आज मंदिर परिसर में महिलाएं दिखीं?
जी, महिलाएं तो बहुत सारी दिखी हैं, मगर वो सारे महिलाएं जो आई हैं यहाँ वो 50-55 साल की उम्र से ज्यादा उम्र के लोग महिलाएं हैं।
इसका मतलब मतलब जो 50 साल की उम्र कम उम्र की महिलाओं को जो दिया गया था कि वो जा सकती हैं, उस उम्र में आपको कोई महिलाएं नहीं दिखी?
नहीं नहीं, यहाँ कोई दिखी भी नहीं है, और अभी शायद आज पता नहीं, अगर यहाँ कुछ महिलाएं आई भी तो शायद उनको पुलिस की सुरक्षा के साथ ही आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एक मूड है, यहाँ जिस तरह से लोग बात करते हैं इस मामले के बारे में, ऐसा लगता है कि अगर महिला अगर 10 और 50 साल के बीच की महिला यहाँ आई तो यहाँ एक तरह का वो, जैसे कि कल हमारे साथ एक चेन्नई से 3 लोग आए थे, उसमें से बहुत 2 बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा था कि हम इस मैंने इसलिए आए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गए हैं कि महिलाओं को यहाँ छोड़ने के लिए, तो हम यहाँ अगले साल से नहीं आएंगे। मतलब अच्छा। ये 30 साल से आ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि अभी हम नहीं आएंगे। तो इस तरह का जब लोगों की सोच है तो शायद यहाँ एक 50 से कम उम्र की महिला आना उतनी आसान
नहीं होगा। जी, प्रशासन की बड़े पैमाने पर तैयारियां थी कि विरोध को रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद विरोध हुआ, हिंसा हुई। कितना बड़ा है विरोध का स्वरूप?
जी, कल का जो विरोध हुआ वो ज्यादातर मीडिया पे हुआ, मीडिया के टेलीविजन चैनल्स पे हुआ, और मतलब एक तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से एक चुन चुन कर मीडिया वालों को पे हमला हुआ कल, और इसलिए आज कल रात को ही कल आधी रात से धारा 144 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है, और शायद आज देखना पड़ेगा कि किसका तनाव होगा यहाँ महिलाओं को या दूसरे भक्तों को आने के लिए।
आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है?
जी, यहाँ तो बाकायदा हड़ताल लाई गई है, क्योंकि कल जो पुलिस लाठीचार्ज की थी, लाठी का इस्तेमाल की थी, उस विषय को लेकर प्रवीण तुगाड़िया का अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और बीजेपी आज हड़ताल बुलाया है यहाँ, तो अभी वो उसका परिणाम क्या होगा वो देखना पड़ेगा।
जी, ताजा
मंदिर में तो बहुत सारे लोग आए हैं, करीब 5,000 से 10,000 लोग आए हैं पूजा के लिए। आज सुबह 5 बजे निर्मला पूजा शुरू हुआ, जो पूजा मंदिर खुलने के पहले दिन होता है।
जी,
वो
जी।
चल रहा है, 8 बजे तक चलेगा।
जी, ताज़ा जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान कुरैशी। यौन शोषण के आरोपों के चलते विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अकबर खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते रहे हैं। शुरुआत में बीजेपी उनके बचाव में दिख रही थी, लेकिन कल अचानक उनके इस्तीफे की खबर आ गई। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में अकबर पहले मंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। भाजपा के लिए उनके इस्तीफे के क्या मायने हैं, और क्या आगामी चुनावों में भाजपा की छवि पर इसका कुछ असर पड़ेगा? बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी की रिपोर्ट में सुनिए।
एमजे अकबर ने बुधवार को ये कहते हुए भारत के विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया कि अदालत की लड़ाई उनकी निजी लड़ाई है और वो मंत्री पद पर रहते हुए इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहते। नाइजीरिया के दौरे से लौटने के बाद सोमवार को एमजे अकबर ने आरोप लगाने वाली महिलाओं में से एक पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। साथ ही आरोप लगाने वाली अन्य महिलाओं को चेतावनी दी थी कि वो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन 72 घंटों के भीतर ही स्थिति बदली और कल शाम को अकबर के इस्तीफे की बात सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो पार्टी के दबाव में आकर ही एमजी अकबर ने इस्तीफा दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई एमजी अकबर के इस्तीफे का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए? इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार अदिति फर्निस कहती हैं कि उन्हें इस इस्तीफे की उम्मीद नहीं थी।
इसी तरह का एक डेफिमेशन केस दायर किया था वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल साहब के खिलाफ, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वो मंत्री रहे और फिर भी केस लड़ते रहे। उसी तरह से हम लोगों को ये अपेक्षा थी कि शायद बीजेपी उसी लय में अकबर साहब का भी केस, जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक शायद वो मंत्री बने रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने भी एक ट्वीट का जिक्र करते हुए इस कैंपेन को समर्थन देने की बात कही। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं कि ये इस्तीफा एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए उठाया गया कदम है।
देखिए, अगर इस्तीफा नहीं लेते तो इमेज और बिगड़ती, इस्तीफा ले लिया है तो थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो गया। दूसरा, जो गुस्सा बिल्डअप कर रहा था ना महिलाओं में भी और लोगों में कि भाई एक इंसान ने इतना कुछ किया और एक के बाद एक महिला आके अपना एक्सपीरियंस अनुभव बता रही थी, तो एक डिस्गस्ट भी बिल्डअप हो रहा था उससे। और कोई एक्शन नहीं लेना और सरकार का मौन रहना और कहना हम तो एक डिस्टेंस रखेंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं था। और ये सरकार को मेरे ख्याल समझ में आ गया कि एमजी अकबर का भार हम क्यों ढोए।
सवाल यह भी उठता है कि क्या बीजेपी के इस इस्तीफे का फायदा विपक्ष उठा सकेगा? इस पर नीरजा चौधरी का मानना है कि दरअसल विपक्ष खुद ही इस मसले पर मौन साधे हुए है।
देखिए, अभी तक तो कांग्रेस ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया है, बट सारी पार्टियां जो ऑपोजिशन की और जो स्ट्रॉन्ग महिलाएं हैं, मायावती चुप्पी, ममता बनर्जी चुप, वैसे सुषमा स्वराज भी चुप रही हैं, महिलाओं के हकों की लड़ाई वो लड़ती रही हैं लेकिन चुप थी, सोनिया गांधी चुप। तो ये मुझे लगता है कि सबको लगता है कहीं हमारे मत्थे ना ये मड़ा जाए सारा कुछ।
वहीं अदिति फर्निस कहती हैं कि शुरुआत में बीजेपी नेता इन आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन आवाजें बढ़ने के साथ साथ दबाव बढ़ने लगा था।
शुरू शुरू में ये एक सोच थी कि ये अभिजात्य वर्ग की महिलाएं हैं जो कि आरोप लगा रही हैं, वैसे भी ये हमको वोट नहीं देती हैं, आरोप कोई भी लगा सकता है, इस तरह से लांछन। लेकिन फिर एक के बाद एक जब आते रहे लांछन और आरोप, ये भी लगने लगा कि ये शायद पूरी तरह से गलत नहीं है। तो मेरे ख्याल से मोदी जी की सरकार ने ये सोचा कि अब पानी फिर से ऊपर उठ चुका है और अब कुछ करना पड़ेगा।
माना जाता है कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने एक जबरदस्त जीत हासिल की थी तो उस जीत में महिला मतदाताओं का बड़ा योगदान था। लेकिन हाल में मीटू अभियान और साथ ही सबरीमला मंदिर में प्रवेश पर चल रहे विरोध प्रदर्शन ने एक तरह से बीजेपी की छवि को महिला विरोधी जैसा बनाने का काम किया है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी इन तमाम मुश्किलों का सामना कैसे करती है। नवीन नेगी, बीबीसी दिल्ली।
एमजी अकबर अपने जमाने में एक जाने माने संपादक रह चुके हैं। लंबे वक्त तक वो दी एशियन एज के संपादक रहे। जिन महिलाओं ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं उनमें से एक हैं गजाला वहाब, जिनका कहना था कि एशियन एज में नौकरी के दौरान अकबर ने उनका उत्पीड़न किया। अब अकबर के इस्तीफे के बाद गजाला कैसा महसूस कर रही हैं और आगे उन्हें क्या उम्मीद है? बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने गजाला वहाब से बात की और यही जानने की कोशिश की।
मुझे पहले थोड़ी देर यकीन नहीं हुआ, मैंने 2-3 साइट पे कंफर्म किया और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा खुश थी।
जब डिफॉर्मेशन केस फाइल किया तो सिर्फ प्रिया रमानी पे था उनका, लेकिन जो स्टेटमेंट जारी किया था उसमें आपके आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज किया था। उसके बाद आपका एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा, बाद में आपने ट्विटर पे भी डाला, लेकिन अब जो उन्होंने डिफेंस दिया है कि मैं बतौर मंत्री नहीं लड़ना चाहता था ये केस, एज एन इंडिविजुअल लड़ना चाहता था, इस पर इस डिफेंस पर आपका क्या कहना है?
मेरे ख्याल से ये फेयर इनफ है कि अगर वो बतौर मंत्री लड़ते हैं तो फिर ये होता है कि सरकार का पूरा वेट उनके पीछे है, उनके साथ है, अब वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, तो ये उनकी लॉजिक होगी।
आप लोगों के आरोप के बाद जो 20 लड़कियां एक साथ एशियन एज की सामने आई और कल उन्होंने कहा कि हम भी इसमें हमारी भी सुनिए, ये कितना बड़ा चेंजिंग मोमेंट आपको लगा?
ये एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है, बट ये होना ही था। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक को आप टारगेट करें और बाकी सब चुप बैठे रहें, बिकॉज इवेंचुअली ये लड़ाई तो सभी के बिहाफ पे सब लड़ रहे हैं, ये इंडिविजुअल लड़ाई तो है नहीं।
और इस मीटू मूवमेंट का भविष्य आगे कैसे देखती हैं? बहुत लोग इस पर आरोप लगा रहे थे ये सिर्फ नेमिंग एंड शेमिंग है, इसमें प्रूफ कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो अब आपको क्या लगता है व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फॉर दिस मीटू मूवमेंट ऑफ इंडिया?
आई डोंट रियली केयर कि लोग क्या क्या इस पे इल्जाम लगाए और इंफॉर्मेशन देते रहे हैं। द फैक्ट इज कि ये एक कामयाब मूवमेंट वर्ल्ड वाइड रहा है और ये यहाँ पर इंडिया में भी आया है और इसने अपना असर दिखाया है। एक नहीं कई सारे हेड्स हैव रोल्ड, कई सारे लोगों को सबक मिला है और एक कॉन्शियसनेस फैल रही है धीरे धीरे कि आप किस तरीके का बर्ताव कर सकते हैं, किस तरीके का नहीं कर सकते हैं। लड़कियों में कॉन्शियसनेस आ रही है, औरतों में, कि हमें यह चीज को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है हम एक्सप्रेस करें उसको, ये हमें कबूल नहीं है।
मैम ये तो पहला आप कह सकते हैं कि पहला किसी कोई शख्स है जिसने इस्तीफा दिया और वो भी इतना बड़ा शख्स है, राजनीति में पहला नाम आया और उसको इस्तीफा देना पड़ा। आपको क्या लगता है बहुत सारे ऐसे नाम आए जिन पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, जैसे कि आलोक नाथ के बारे में हम कह सकते हैं, बाकी और दो चार लोग हैं कल जतन दास के ऊपर भी आरोप लगे, तो मतलब एक आदमी ने इस्तीफा दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है बाकी लोगों को भी इससे सबक लेने की जरूरत है?
नहीं, मैं नहीं इस बात से सहमत हूँ कि एक आदमी ने दिया है और बाकियों पे कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट से ये शुरू हुआ है 10-15 दिन पहले से, तो काफी सारे लोग हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, जिनके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बिठा दी गई है, इंटरनल इंक्वायरीज इनिशिएट कर दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट उनके कैंसिल हुए, तो मीडिया में ही काफी सारे एक्शन लिए गए हैं। तो ये सही बात नहीं है कि सिर्फ ये पहला इंसान है जो जिसके ऊपर एक्शन लिया गया या जिसने रिजाइन किया है।
क्या आपको लगता है लॉ में भी बदलने की जरूरत है अभी, कि अगर हमारे साथ पहले भी हुआ है तो भी हमें उसे बदलना चाहिए? चाइल्ड अब्यूज
हमारे पास काफी सारे कानून हैं, अगर वही कानून हम ठीक से इम्प्लीमेंट करें तो इतना ही काफी है।
आखिरी सवाल, क्या सबक मिलता है इससे और क्या आप आगे कैसे देख रही हैं?
आई थिंक इसको इस कॉन्शियसनेस को खत्म नहीं होना चाहिए, इसको चलते रहना चाहिए, आगे भी चलते रहना चाहिए। अभी तो ठीक है, बड़े शहरों में और एक कुछ स्पेसिफिक तबके में लिमिटेड है, ये भी एक एलिगेशन है कि पढ़े लिखे और औरतें जो हैं वो कर रही हैं। तो पॉइंट इज ये शुरुआत है एंड आगे होपफुली ये छोटे शहरों में भी जाएगा।
गजाला वहाब से बात की सरोज सिंह ने।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब एक नजर आज के अखबारों पर। भूमिका राय अखबारों के साथ स्टूडियो में आ गई हैं। एमजे अकबर का इस्तीफा जाहिर है आज की सबसे बड़ी खबर है। अखबारों ने इस खबर को कैसे छापा है और दूसरी कौन सी सुर्खियां हैं आज की अखबारों?
और सबरीमाला जो है वो दूसरी प्रमुख खबर कहें या बोले पहले पन्ने की जो खबरें हैं, एक तो एमजे अकबर का इस्तीफा, क्योंकि मोदी सरकार में ये पहली बार हुआ है कि किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है। और इसी के साथ मीटू कैंपेन जो है उसके तहत उन पे यौन शोषण का जो था आरोप लगा था उसके तहत एमजे अकबर ने कल इस्तीफा दे दिया। और सबरीमाला में जो है कपाट तो खुले हैं लेकिन महिलाओं के प्रवेश को लेकर के अभी भी विरोध हो रहा है। और ये दो ऐसी खबरें हैं मानसी जो लगभग हर अखबार ने अपने पहले पन्ने पे प्रमुखता से छापा है। और इसके अलावा अगर इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी है जिसके अनुसार देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस ने ईरान पर अमेरिका के लगाए आर्थिक प्रतिबंधों के मद्देनजर ईरान से तेल आयात नहीं करने का फैसला किया है
जी।
और ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध 4 नवंबर से लागू हो जाएंगे। अमेरिका सीरिया और इराक के संघर्ष में ईरान की हिस्सेदारी से नाराज है। और अगर आपको बताऊं तो एक बड़ी खबर ये भी है कि नई दिल्ली के निजी स्कूलों में, क्योंकि बच्चों से जुड़ी बातें हैं और हम सब के घर में बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ये खबर हम सभी के लिए,
और एडमिशन का समय अब आ रहा है
बिल्कुल, तो ये खबर ये है कि नई दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी की 13,000 सीटें खाली हैं लेकिन इनमें आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को जगह नहीं दी जा रही है। ये आंकड़ा साल 2018-19 का है और आपको पता ही होगा कि नया अकादमिक साल अब कुछ ही महीने में शुरू हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी खबर है जिनके बच्चों को एडमिशन मिलना है और लेकिन आर्थिक रूप से अक्षम हैं वो लोग। और एक वीडियो वायरल हुआ था यूट्यूब पे जिसमें एक आदमी है जिसने हाथ में गन ले रखी है और एक महिला से उसकी तू तू
जी बसपा किसी पूर्व बसपा नेता के बेटे बताए जाते हैं,
पूर्व सांसद हैं बसपा के राकेश पांडे, उनके बेटे हैं ये आशीष पांडे जी। तो हिंदुस्तान और स्टेट्समैन ने ये खबर छापी है कि पुलिस की मांग पर अदालत ने आशीष पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इस मामले में होटल के सुरक्षा प्रबंधक ने भी शिकायत की थी और प्राथमिकी जो है FIR जो है वो दर्ज कराई थी
जी।
और एक और खबर है, क्योंकि अब हम लोग जितने लोग सुन रहे हैं हमारे लिए सांस लेना दुभर होता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो हवा है वो दिन पर दिन और प्रदूषित होती जा रही है। पहली बार सूचकांक जो है वो 300 के पार चला गया है, जो एक बहुत बड़े खतरे की निशानी है
जी।
तो इस तरीके, क्योंकि आसपास दिल्ली के आसपास के गांव में पुआल जिसको बोलते हैं
पराली जलाई
जा रही है इसके चलते
जी। अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए शुक्रिया भूमिका राय। और अब वक्त है साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान का। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोजी के लापता होने के मामले में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अपने पुराने साथी सऊदी अरब का साथ नहीं देंगे। इधर खाशोजी के गायब होने से जुड़े सबूतों की तलाश में तुर्की के अधिकारियों ने इस्तांबुल में सऊदी दूतावास के दफ्तर और सऊदी अरब के दूत के घर की तलाशी ली है। इस मामले में पूरी दुनिया सऊदी अरब के साथ साथ अमरीका पर भी दबाव बना रही है। अमरीका और सऊदी अरब के रिश्तों में हाल में कुछ तनाव भी देखने को मिला था, जो खाशोजी प्रकरण के बाद हालात और मुश्किल हो गए हैं। इसका क्या कारण है? दुनिया जहान में BBC संवाददाता आदर्श राठौर ने इसी की पड़ताल करने की कोशिश की।
दुनिया जहां,
मैं अपने बच्चों और पोतों के लिए काफी चिंतित हूँ। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है सत्ता पर एक ही आदमी का काबिज होना। हमें सुधार की जरूरत है, पर एक ही शख्स के हाथों ताकत सीमित हो जाने से देश के गलत दिशा में जाने का खतरा है, चाहे वो सऊदी अरब हो, जर्मनी या इराक।
ये आवाज थी सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोजी की, जिनका पिछले 2 हफ्तों से कोई अता पता नहीं। जैसा कि आपने सुना, खाशोजी खुलकर सऊदी अरब की राजशाही का विरोध करते थे। तुर्की ने आशंका जताई है कि इस्तांबुल में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में खाशोजी की हत्या कर दी गई है। सऊदी अरब इसका खंडन कर रहा है, मगर खाशोजी की गुमशुदगी को लेकर उंगलियां सऊदी अरब पर ही उठ रही हैं। साथ ही अमरीका पर दबाव बढ़ रहा है, जो सऊदी अरब का बेहद खास और करीबी पश्चिमी देश है। तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ओमेर अनस कहते हैं कि इस मामले को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं।
ट्रंप सऊदी अरब का बहुत बड़ा सहयोगी के तौर पर जाने जाते हैं, और जमाल खाशोगी वो वाशिंगटन में ही रुके हुए थे, और वो अभी टर्की अपने किसी काम से आए हुए थे। ऐसे में ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया कि वो एक ऐसे जर्नलिस्ट जो कि US में बेस था, US में रह रहा था, और उसको ऐसे गायब कर दिया गया है। तो इसको लेकर के पूरी दुनिया से ट्रंप के ऊपर लगातार प्रेशर बनता रहा।
खाशोजी वाला मामला सामने आने से पहले ही ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में मिसिसिपी में एक रैली को संबोधित करते हुए सऊदी अरब और वहां के शासक किंग सलमान पर तीखी टिप्पणियां की थी।
We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Salman, but I said king.
हम सऊदी अरब की रक्षा करते हैं, वो अमीर हैं, मुझे किंग सलमान पसंद हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा, किंग सलमान, हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन आप 2 हफ्ते में ही सत्ता खो सकते हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है जो अमेरिका अपने सबसे पुराने सहयोगी देशों में से एक सऊदी अरब को लेकर इस तरह की तीखी भाषा इस्तेमाल कर रहा है। क्या दोनों देशों की गहरी दोस्ती में दरार पैदा हो गई है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान बताते हैं कि क्यों आजकल अमेरिका सऊदी अरब को लेकर कुछ उखड़ा हुआ है।
करंट क्राइसिस जो चल रहा है जमाल खाशोगी का, उसके पीछे 3-4 चीजें हैं। एक तो ये है कि जब से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो न्यूक्लियर डील है उसके बाद से जो अमेरिका ने विड्रॉ किया है, तेल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, और अमेरिका ने पिछले 3-4 हफ्तों से बहुत दबाव डाला है सऊदी अरेबिया के वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, लेकिन सऊदी अरेबिया के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो ईरान का जितना कोटा था कि वो पूरा का पूरा वो भरे।
ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही सऊदी अरब को लेकर बेरुखी अपना रहा है, बल्कि सऊदी अरब भी अमेरिका से अलग अपना वर्चस्व खाड़ी देशों के बीच बनाने की कोशिश कर रहा है। अंकारा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ओमेर अनस कहते हैं कि इसकी शुरुआत अरब स्प्रिंग से हुई थी।
तो जब 2011 में अरब देशों में एक अरब स्प्रिंग के नाम से जो क्रांतियां आना शुरू हो गई, तो उसमें सबसे पहली क्रांति ट्यूनिस में आई और दूसरी क्रांति इजिप्ट में आई, मिस्र में। सऊदी अरब लगातार इस बात की कोशिश कर रहा था कि मिस्र में हुस्नी मुबारक की सरकार को न गिरने दिया जाए, क्योंकि हुस्नी मुबारक सऊदी अरब का जो क्षेत्रीय समीकरण था उसमें एक बहुत बड़े सहयोगी के तौर पर वो बने हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी बराक ओबामा ने हुस्नी मुबारक से अपना समर्थन वापस ले लिया और हुस्नी मुबारक को इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर किया और उसके बाद वहां की सरकार बदल गई।
सऊदी अरब में जहां इस्लामिक राजशाही है, वहीं अमेरिका धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक गणतंत्र है। प्रोफेसर मुख्तदर खान बताते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते 1935 से शुरू होते हैं,
जब अमेरिकन कंपनीज ने वहां पे तेल का सर्च करना शुरू किया। जब से अमेरिका के ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ बेहतर हैं, उससे पहले सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात ज्यादातर इंग्लैंड के साथ थे। और 1940s-1950s से जो सऊदी अरेबिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, ऑयल का जो सर्च हुआ है, वो सारा का सारा अमेरिका के साथ हुआ है। 80 से कही के सऊदी अरेबिया की जो ऑयल का कंट्रोल है वो बिल्कुल अमेरिका से इंडिपेंडेंट हो गया है।
बीच में कई मौके ऐसे भी आए जब दोनों देश कई मुद्दों पर आमने सामने खड़े हो गए। मध्य पूर्व मामलों के जानकार उमेर अनस।
1973 में जब अरब देशों और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ, तो सऊदी अरब को ये लगा कि अमेरिका अरब देशों का साथ देगा या निष्पक्ष रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अमेरिका ने पूरी तरह से इसराइल का साथ दिया, जिसके बाद सऊदी अरब के जो उस वक्त के बादशाह थे किंग फैसल, उन्होंने सारे पश्चिमी जगत के खिलाफ और जिन्होंने भी इसराइल का साथ दिया था उनके खिलाफ एक तेल की पाबंदी लगाने का एक ऐलान कर दिया।
प्रोफेसर मुख्तदर खान मानते हैं कि अमेरिका के लिहाज से देखें तो उसका रिश्ता सऊदी अरब से नहीं बल्कि वहां के शासकों से है।
बेसिकली अमेरिका के ताल्लुकात सऊदी रॉयल फैमिली के साथ थे, बल्कि सऊदी अरेबिया एज ए मुल्क और कल्चर के साथ नहीं थे।
जानकार कहते हैं कि अगर खशोजी की गुमशुदगी को लेकर उंगलियां सऊदी शासकों पर उठ रही हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। प्रोफेसर मुख्तदर खान बताते हैं कि खशोजी के लेख उस छवि को नुकसान पहुंचा रहे थे जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गढ़ रहे थे।
सऊदी गवर्नमेंट ये रियलाइज कर रही थी कि हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स इमेज बदलने में खर्च कर रहे हैं और ये शख्स 2-3 ऑपरेट्स में हमारा सारा का सारा काम अंडू कर दे रहा था।
खशोजी की गुमशुदगी को लेकर बढ़ रहे पश्चिमी देशों के दबाव के बीच सऊदी अरब के अखबारों में ऐसे लेख छप रहे हैं कि अगर सऊदी अरब पर दबाव डाला गया तो इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्रोफेसर मुख्तदर खान कहते हैं कि ऐसी धमकियों में दम नहीं दिखता।
देखिए, ये धमकियां तो पहले भी बहुत दूसरे मुल्कों ने भी दी हैं, ये तुर्की ने भी दिया था। तुर्की जैसे मुल्क इमीडिएटली रियलाइज करे हैं कि ये रशिया चाइना वगैरह बोलने के लिए अच्छा लगता है अमेरिका पे दबाव डालने के लिए, बट दे आर नॉट ऑल वेदर फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स भी नहीं।
ऐसे में इस मामले का हल क्या निकलेगा? मध्य पूर्व मामलों के जानकार उमेर अनस बताते हैं कि इस मामले को सुलझाने की पूरी जिम्मेदारी सऊदी अरब पर है।
जमाल खशोगी सऊदी अरब के काउंसलर के अंदर गए हैं, बाहर नहीं निकले हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और संभावित रूप से उनकी हत्या हो गई, ये बात भी अब सबको समझ में आ गई है, इसलिए सऊदी अरब के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है।
जानकार मानते हैं कि ये घटना सऊदी अरब और अमेरिका के संबंधों के लिए टर्निंग पॉइंट है और अगर इस मामले पर सऊदी अरब ने अमेरिका को आंखें दिखाई तो संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से संबंध बेहतर करके सऊदी अरब को अलग थलग करने की कोशिश करें।
दुनिया जहान की ये कड़ी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार सबरीमला के कपाट बुधवार को खोले गए, लेकिन महिलाओं के प्रवेश को लेकर विरोध अब भी है। मीटू अभियान के तहत यौन उत्पीड़न झेल रहे विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के एक टेक्निकल कॉलेज में हुई गोलीबारी में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वो चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कांगो गणराज्य में अतिरिक्त संसाधनों को मंजूरी दे। ट्विटर ने रूस और ईरान से जुड़े 1 करोड़ ऐसे ट्वीट सार्वजनिक किए हैं जो विदेशों में राजनीतिक रुझानों को प्रभावित करने की कोशिश से संबंधित थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक आपके साथ है बीबीसी हिंदी का .com पन्ना। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।